संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। हरि सो जग वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। श्री भक्तमाल की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान की जय। भक्तमाल के द्वितीय श्रोता श्री रसखान जी की जय। भक्तमाल के सभी भक्तों संतों को जय हो, सबको प्रणाम। राधे श्याम, श्री राधे। आज भक्तमाल श्रृंखला में हम एकादशी जी के बारे में बात करते हैं। एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ और एकादशी व्रत सतयुग में कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे करना लोगों ने शुरू किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। शंखासुर नाम का एक दैत्य था जिसको भगवान ने मार डाला। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुए हैं मूर राक्षस। मूर राक्षस जो था उसका पुत्र था और उसने बदला लेना भगवान से ठान लिया। उसके लिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और घोर तपस्या करी। घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए उसके सामने। उससे पूछे, बताओ भाई क्या वर चाहिए। उसने कहा, मैं आपकी सृष्टि में ना किसी मनुष्य से मरूं, ना देवता से मरूं, ना ऋषि से, ना मुनि से, और ना भगवान शिव से, ना भगवान विष्णु से, और जहां तक की भी आपकी सृष्टि है मैं किसी से भी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है भाई, तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम किसी से मरोगे नहीं। वो वरदान लेकर के उसने, तो टारगेट था भगवान विष्णु, उसके तो मारना। उसने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया, सब लोकपालों को जीत लिया, सबको जीत तबाह, सब देवताओं को भगा दिया उसने, सब त्राहीमाम मचा दी मूर राक्षस ने चारों तरफ। वो त्राहीमाम देख करके सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास आए, त्राहीमाम महाराज हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव कहने लगे कि चलो भगवान नारायण के पास चलते हैं, कोई रास्ता निकाले। भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, रास्ता क्या है, मारते हैं उसको, चलो। भगवान नारायण अपने तस्त्र शस्त्र उठा करके गरुड़ जी पे सवार हो युद्ध के लिए चल पड़े। ये भगवान की एक लीला थी, वो दिखाने, नहीं तो भगवान इतनी आसानी से नहीं चलते किसी को मारने। भगवान ने कहा, चलो हम निपटा देते हैं उस युद्ध में, आप लोग भी चलो। तो ब्रह्मा जी सब लोग युद्ध में गए और उन्होंने कहा ही था कि वो किसी से हार ही नहीं रहा है युद्ध में। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को ये नहीं बताया कि मैंने वरदान दे दिया उसको ऐसा, पर भगवान को सब पता है, वो थोड़ा ही पूछेंगे ब्रह्मा जी से कि तुमने कोई वरदान दिया, वो तो साबित करेंगे। तो उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया, भगवान ने घोर संग्राम किया पर उस पर किसी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव ही नहीं है। भगवान ने अंत में सुदर्शन छोड़ा, सुदर्शन भी लौट आया ऐसे ही, क्योंकि सुदर्शन तो लौटता नहीं है ऐसे, वापस आ गया। तो भगवान नारायण यहाँ नाटक कर रहे हैं, जैसे इन्हें पता नहीं है। वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं, कोई वरदान वरदून दिया है क्या इसको। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हाँ वरदान तो दिया, क्या वरदान दे दिया ऐसा। बोले, हमने दिया है कि ना तो आपसे मरेगा, ना शिव जी से मरेगा, ना हमसे ही मरेगा, ये हमारी सृष्टि में किसी से नहीं मरेगा। भगवान कहने लगे, तो क्यों टाइम पास करा रहे हो भाई, तो पहले बताना था ना, चलो। ब्रह्मा जी बोले, कहाँ चलो, क्या भागते हैं अभी इसके सामने से, और क्या मरेगा तो है नहीं। ब्रह्मा जी बोले, और हम बोले तुम भी भागो और क्या। तो युद्ध छोड़ के सब लोग भाग गए, युद्ध में से भागे। तो भगवान बद्रिकाश्रम में एक कंदरा में एक गुफा में भगवान ने प्रवेश किया, सो गए वहाँ जाके। अब मूर ने पीछा किया भगवान नारायण का ही, उसे तो भगवान नारायण से दुश्मनी थी, उसकी मारना था उनको। उसे लगा सो रहे हैं, बढ़िया मौका है, आज खत्म ही कर देते हैं इनको। घुसा वो गुफा में, वहीं पे घुस गया भगवान को। भगवान सामने लेटे हुए हैं और उसने भगवान पे प्रहार करने की जैसे ही चेष्टा की तो भगवान की छाती से प्रकट हुई एक दिव्य ज्योति। उसने रूप धारण किया एक देवी का, वो बाहर निकली। उसको देख करके भयभीत हुआ मूर में, और उसमें बहुत दिनों तक लड़ाई चली बाहर, और देवी ने मूर को ख़त्म कर दिया। जब वो मूर खत्म हो गए तो भगवान जागे, सामने उन्होंने देवी को देखा, आप कौन। उसने कहा, महाराज मैं तो आपके हृदय से प्रकट हुई हूँ, आप ही बताइए मैं कौन। भगवान ने कहा, आप एकादश दिन के 11वें दिन पैदा हुई है, एकादश दिन में पैदा हुई, तो आपका नाम है एकादशी, और आप मेरे हृदय से पैदा हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं, प्रकट हुई हैं, तो इसलिए मेरे हृदय की उपासना के स्वरूप ही आपकी उपासना मानी जाएगी। यदि आपकी कोई उपासना कर रहा है तो वो मेरी ही उपासना है साक्षात। आपको प्रेम करने वाला मुझे ही प्रेम कर रहा है। जो सविधि आपका व्रत उपवास करेगा, आपको मानेगा, उसको मेरी प्राप्ति होगी, उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। ये भगवान ने एकादशी जी को वरदान दिया। तो एकादशी क्या है? एकादशी स्वयं भगवान नारायण की शक्ति है। एकादशी भगवान नारायण से अलग नहीं है। एकादशी भगवान से ही, वो उन्होंने अपनी शक्ति प्रकट करी, उससे मार दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया था। तो भगवान ने मूर को मारने के लिए एकादशी जी को प्रकट किया था, और भक्तों की गति करने के लिए, भक्तों को एक सही और सुगम और सहज रास्ता प्रदान करने के लिए भी एकादशी जी का प्राकट्य हुआ है। क्योंकि सिर्फ एकादशी के सहारे आप कली काल में, कलयुग में एकादशी के सहारे आप वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं। जो सविधि एकादशी व्रत करते हैं उनको ज़्यादा कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एकादशी का, अगर किसी को निष्ठा है एकादशी की, उसने एकादशी निष्ठा को अपने जीवन में निभाया है, उसी को वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। भगवान नारायण की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। तो ऐसा एकादशी का नियम है। एकादशी जी की 3 दिन का ये व्रत की साधना होती है। दशमी को एक बार भोजन करना होता है, दशमी से ही शुरू होता है। एकादशी को निराहार रहना होता है। जो आजकल तो निराहार रहना सभी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह या जूस या जो भी थोड़ा बहुत कुछ ले सकता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, वो ले सकते हैं एकादशी के दिन। और द्वादशी के दिन भी इसमें एक ही बार भोजन बताया है कि एक ही बार करना चाहिए, पर लोग 2 बार भी करते हैं, पर 3 बार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो 3 दिन का व्रत हो गया। दशमी एक बार भोजन करना है, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना है, सिर्फ फल वल जो भी चाहिए वो थोड़ा ले लो। और उसके बाद द्वादशी को जब पारण होता है, एक ही बार भोजन का विधान है, लेकिन 2 बार भी लोग करते हैं, 3 बार बिल्कुल नहीं करना है द्वादशी को भोजन। ये श्री एकादशी जी की कथा है। अभी सतयुग में एकादशी कैसे प्रारंभ हुई? एक रुक्मांगद राजा थे। रुक्मांगद जी के वो बड़े धर्मशील राजा थे, धर्म की बड़ी निष्ठा थी उनमें। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर, बहुत बड़ा बागीचा लगाया हुआ था। सुंदर सुंदर फूल थे, विभिन्न तरह के फूल थे। फूल खिलते थे तो कहा जाता है कि उसकी सुगंध स्वर्ग तक जाती थी। इतने फूल थे और इतने सुगंधित दिव्य फूल उसने लगाए हुए थे अपने बागीचे में। बहुत सारे माली उनकी रक्षा करते थे। तो बताते हैं कि कुछ दिन के बाद उसमें से रात में कलियाँ तो होती थी, लेकिन सवेरे ही कोई फूल ही नहीं मिलते थे। फूल नहीं मिलते थे तो राजा ने पूछा रुक्मांगद ने कि इसमें बहुत दिनों से फूल ही नहीं आते, कहाँ जाते हैं? बोलते हैं, वो माली भी बोलते थे, महाराज हम पहरा दे रहे हैं, फूलों का पता ही नहीं चलता कहाँ जाते हैं। होता यूँ था कि रात में अप्सराएं आती थी बगीचे में, और रात में ही वो बहुत सारे फूल लेकर के उड़ जाया करती थी, आकाश में निकल जाती थी स्वर्ग में। इनको पता नहीं चल रहा था फूल इतने दिव्य फूल हैं, इतनी कलियाँ खिलती कहाँ जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था, यानी दशमी की रात एकादशी आने वाली थी, और उर्वशी जी वहीं रह गई बागीचे में। सब लोग चले गए, सब अप्सराएं, तो वो अकेली रह गई। तो मालियों ने जाके खबर दी रुक्मांगद को कि महाराज एक अप्सरा है वहाँ पे, और देखो क्या सुंदर है। अच्छा, रुक्मांगद जी गए, रुक्मांगद जी ने देखा उर्वशी को, उर्वशी इतनी सुंदर, उन्होंने कभी इतनी उन सुंदर स्त्री की कल्पना भी नहीं करी थी, इतनी सुंदर। वो जैसी बढ़े उर्वशी की तरफ, उन्होंने हाथ से इशारा किया कि दूर रहना, मुझसे स्पर्श भी मत कर देना मुझे, क्योंकि जो देवांगनाएं होती हैं वो देवताओं के भोग के लिए ही होती हैं, उनको मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकते। उसने कहा कि वर्जित है, मुझे स्पर्श करना भी वर्जित है आपका। इनका मन भी वैसा नहीं हुआ कि जैसे ऋषि मुनियों का मन डोल जाता था, क्योंकि ये धर्मशील राजा थे, धर्म को ज़्यादा महत्व दिया करते थे। तो इन्होंने उससे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, आप यहाँ कैसे? और उसने बताया कि हम बहुत दिनों से आपके बागीचे में आती हैं, बहुत सारी अप्सराएं और दिव्य यहाँ से पुष्प लेकर हम जाती हैं, सुगंधित और दिव्य बड़े पुष्प हैं। बोली आप कैसे रह गई? कि आज एकादशी का तो दिन है और मेरा स्पर्श हुआ है, इसमें बैंगन के भी कुछ वो खड़े हुए हैं, वो बैंगन का कांटा मुझे छुआ है, बैंगन से स्पर्श होने से मेरे पुण्य नष्ट हो गए हैं। एक तो एकादशी का दिन था, बैंगन से स्पर्श हो गई। तो बैंगन को इस तरीके से माना जाता है जैसे मांस, जैसे मदिरा, वो संज्ञा इसकी है बैंगन की। बैंगन को भक्ष्य करना मतलब अभक्ष्य है बैंगन, इसको खाना नहीं चाहिए। भगवान हरि को तो कभी नहीं प्राप्त कर सकते जो लोग बैंगन खाते हैं, ऐसा कहा गया है, मतलब इसकी तुलना मांस से की गई है, तो बैंगन वर्जित है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या, और मेरी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है, मैं यहाँ से जाके वापस उड़ नहीं सकती हूँ। उन्होंने कहा अब क्या, तो उन्होंने कहा कि जो भी आपके यहाँ पे एकादशी व्रत करे, हाँ क्षमा कीजिए मुझसे एक त्रुटि हुई, कि ये एकादशी की रात थी, दशमी की रात नहीं थी, एकादशी की रात थी जो बैंगन का स्पर्श हुआ, अभी द्वादशी अगले दिन आ गई थी। इन्होंने कहा कि इस रात्रि और पहले दिन जिसने भोजन न किया हो वो अगर मुझे उस एकादशी के व्रत का मुझे सारा पुण्य फल दे दे तो मेरे अंदर वो शक्ति आ सकती है कि मैं अपने लोक में जाऊँ। अब राजा ने चारों तरफ ढिंढोरा पिटवाया और सबसे कहा कि भाई इस राज्य में जिसने भी व्रत किया हो, जिसने भोजन ना किया हो, व्रत तो किसी को पता ही नहीं था, जिसने भोजन ना किया हो वो आए। एक बनिया था, उसके यहाँ दासी थी एक, उस दासी को बनिए ने दो दिन से भोजन नहीं दे रहा था, उसको मार पिटाई कर रही थी किसी बात पे, उसको बड़ा सता रहा था, उसको भोजन क्या जल तक नहीं मिला था, एकादशी के दिन नहीं मिला, पूरी रात वो सोई भी नहीं थी, उसका जागरण हुआ, इसलिए बड़ी वो दिमागी तौर पे इतनी वो दुखी हो चुकी थी कि वो उसको नींद भी नहीं आई और वो मरना चाहती थी कि हम तो जैसे तैसे मर जाएं चाहिए इस दासगिरी से, ये जो तो दास था इसके स्वीकार किए हमने, मर जाएं हम तो इससे अच्छा। तो वो उसी उधेड़ बुन में पूरी रात सो भी नहीं पाई थी। पूछा कि ये वो आई कि इनाम, उसने कहा था जो भूखा होगा उसको इनाम देंगे, ये बोली जी हम तो सो भी नहीं पाए पूरी रात ऐसे ऐसे। उसने कहा कि इसका सही व्रत लगेगा, उससे संकल्प कराया, और उसने कोई एकादशी नहीं पता था, एकादशी के दिन सिर्फ भूखा रहने और जागरण करने से उसको इतना फल मिल गया कि वो अपने लोक को चले गई उसका पुण्य लेते ही। राजा ने ये साक्षात देखा, अरे मतलब ये तो तुक्के से, कोई श्रद्धा भी नहीं थी इसकी, बिना श्रद्धा के एकादशी के दिन भूखा और जागरण से इतना प्रभाव। तो उसने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि मेरे राज्य में कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएगा, जल नहीं पिएगा, उसको एकादशी व्रत करना ही है। और निष्ठा से एकादशी व्रत होने लगा, एकादशी व्रत होने लगा तो यहाँ से सब लोग जाने लगे, जो भी मर रहा है बैकुंठ, यहाँ से नरक जाने का कोई नहीं। ये बात यमराज जी को जब वहाँ पर देखी, उन्होंने कि उस राज्य से तो जो भी आ रहा सीधे बैकुंठ जा रहा है, उन्होंने ब्रह्मा जी को, महाराज यहाँ तो देखो तो क्या हो रहा है, सीधे बैकुंठ जा रहे हैं सब। ब्रह्मा जी ने कहा भाई वो तो एकादशी व्रत कर रहे हैं, भगवान की तो महिमा ही ऐसी है। फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम देखते हैं, तो उन्होंने अपनी माया की एक मोहिनी रुक्मांगद के सामने प्रकट करी। रुक्मांगद गए हुए थे शिकार के लिए एक जंगल में, जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे मोहिनी को देखा, वो ब्रह्मा जी की माया की मोहिनी थी, वो मोहित हो गए उस पर देख करके। उसने कहा कि जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। उसने कहा ठीक है, उसने उससे विवाह संपन्न किया वहीं पे, रुक्मांगद लेके अपने राज्य में आ गया। राज्य में उसकी स्त्री ने भी उसका स्वागत किया, जो पुत्र थे रुक्मांगद के उन्होंने भी स्वागत किया, भाई माता लेके आया ठीक है रहो। लेकिन जैसे ही एकादशी आई, उसने कहा एक चारों तरफ नगर में वही एकादशी का अनाउंसमेंट हुआ, उसने कहा नहीं एकादशी तो नहीं करनी पड़ेगी महाराज, तुम तो नहीं करोगे एकादशी। बोला नहीं ये तो मानूंगा नहीं मैं तुम्हारी बात, बिल्कुल ये तो हमारा दृढ़ निष्ठा है एकादशी में, ये तो हमारा व्रत है। वो बोली कि ठीक है तो मैं चली जाऊंगी। राजा ने कहा कि एकादशी छोड़ के कुछ और मांग लो, वो हम पूरा करेंगे। तो उसने कहा ठीक है एकादशी रहने दो, करो एकादशी, तुम अपने पुत्र का धड़ हमें दे दो, काट दो और वो हमें दे दो, करोगे? अब राजा के सामने धर्म संकट, पुत्र ने सुना तो तैयार हो गया, महाराज मैं तो पिता के लिए मरने को तैयार हूँ, एकादशी का दिन है, भगवान का नाम लेके सही है, और पिता के लिए तो प्राण, क्योंकि वो भी धर्मज्ञ था। उसकी माता ने भी कहा, पुत्र की यानी इनकी जो बड़ी पत्नी थी, उन्होंने भी कहा कि ठीक है मेरे पुत्र के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो पिता के किसी काम आए। तैयार हुए, पुत्र ने अपना धड़ रख दिया, और जैसे ही काटने की बारी आई तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रकट हुए और वो बोले सुदनवा मैं तेरी एकादशी निष्ठा से प्रसन्न हूँ, तेरे पुत्र पर प्रसन्न हूँ, और सपरिवार तुझे बैकुंठ देने के लिए तैयार हैं। बोला महाराज सिर्फ सपरिवार नहीं, हमारी प्रजा का भी आप में उतना विश्वास है, सप्रजा हम बैकुंठ जाने के लिए तैयार हैं। भगवान नारायण ने उसे छाती से लगा लिया। तो यहाँ से और ज़्यादा प्रचार हुआ एकादशी व्रत का, तो सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। इसी प्रसंग में फिर आगे जो रुक्मांगद जी थे उनकी पुत्री वो व्रत करती थी, तो उसके जो दामाद थे रुक्मांगद के वो एक बार इनके राज्य में आए थे रुक्मांगद जी के, और वो भूल से एकादशी के दिन आ गए, वो तो खूब खाते पीते थे वहाँ पे, वो भूल से यहाँ पे आए तो देखा इन्होंने उसकी पत्नी से कहा, अपनी पत्नी से कहा उन्होंने कि भाई हमें चंद्रभागा नाम था इनकी पुत्री का, चंद्रभागा के जो पति आया था उन्होंने कहा भाई हमें तो खाना पीना चाहिए एकादशी को। बोले यहाँ तो नहीं मिलेगा, राज्य का नियम है। बोला मर जाएंगे। बोला मरे तो बहुत अच्छी बात है, बैकुंठ जाओगे। तो वो सही में ही उनके प्राण निकल गए, उन्होंने दिन तो जैसे तैसे निकाला, दशमी के बाद एकादशी का दिन निकाला, लेकिन वो रात बीतते बीतते ही वो सिधार गई। उनको लेकिन जल भी नहीं दिया चंद्रभागा ने, उन्हें पता था कि अगर मरेगा तो बैकुंठ जाएगा, बैकुंठ तो वो नहीं गए, वो उच्च लोकों में चले गए और वहीं का एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण तप के बल पे अनेक लोकों में घूमता था। उसने एक बार उसको उसकी दर्शन हुए एक दिव्य लोक में। उसने कहा कि अरे तुम यहाँ? उसने बताया कि मैं तो भाई इनसे इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ था, ना एकादशी करता था, मेरा तो भगवान तक में विश्वास नहीं था, पर मेरी पत्नी के प्रभाव से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ इस दिव्य लोक में। पर ये तो कुछ दिन का है, जब तक उस व्रत का मेरे प्रभाव रहेगा ये है, ये तो फिर क्षीण होगा, फिर मुझे मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। बोले क्या चाहते हो? बोला बैकुंठ जाना, और बैकुंठ जाऊँगा मुझे एकादशी के या तो व्रतों का फल मिले तो ये मेरी पत्नी दे सकती है, और तो कोई देगा नहीं। तो वो वापस जब यहाँ पे आए इस राज्य में रुक्मांगद के ब्राह्मण घूमता हुआ, उसने चंद्रभागा को बता तेरा पति ऐसे ऐसे दिव्य लोक में है, लेकिन उसे डर है कि वो मृत्यु लोक में फिर आएगा। तो उसने चंद्रभागा ने अपने जितने व्रत किए थे उन सब का फल अपने पति को सौंप दिया। उसके प्रभाव से वो तो बैकुंठ गया ही, इसकी पत्नी भी। उसने कहा मैं अकेला नहीं बैकुंठ जाऊंगा, मैं पत्नी साथ जाऊंगा, क्योंकि उसके प्रभाव से मैं आया हूं। तो पत्नी को भी बैकुंठ ले जाया गया। तो ये हमारी एकादशी जी की महिमा है, और जितना कहो उतनी कम है। इसी एकादशी महिमा में आगे हम चरित्र कहेंगे श्री नामदेव जी का। उनकी एकादशी की जो निष्ठा है वो देखना कितनी पवित्र है, और उनके साथ में क्या क्या हुआ है। तो आज विराम करते हैं यहीं पे। श्री भक्तमाल की जय, भक्तमाल के सभी भक्तों की जय, भक्तमाल के सभी संतों की जय, भक्तमाल के भगवान की जय। श्री हरि नारायण, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, श्री राधेश।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।